तृतीय अंक पेज नंबर 51 एमए द्वितीय सेमेस्टर के का पाठ्यांश पुरुर्वह पुनरस्तम परेहि दुरापना वात इवाहमस्मि यजुर्वेद। हे पुरुर्वह, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्त हूँ। गंधमादन पर्वत पर पुरुर्वह और उर्वशी। पुरुर्वह, जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में, रजनी कर श्रृंगार सितासित नम्मे घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फुल्ल कानन में, अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का, शब्दों से बनती हैं जो मूर्तियाँ तुम्हारे दृग से, उठने वाले क्षीर ज्वार में गल कर खो जाती हैं। खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियाँ खिलक रही हों या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो। शब्दार्थ, अभिसारों में अर्थात मिलन के क्षणों में, सितासित यानी श्वेत और काला अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अमा अर्थात अमावस्या, ज्योत्सना यानी चांदनी, फुल यानी खिले हुए, अनिमिष यानी अपलक, गिरा यानी वाणी। व्याख्या, पुरुर्वह का कथन है। उर्वशी से वे कहते हैं, गंधमादन पर्वत पर निवास करते हुए महाराज पुरुर्वह अपनी प्रियतमा उर्वशी से कह रहे हैं, यह है उर्वशी, जब से हम तुम मिले हैं तब से इन मिलन क्षणों में न जाने कितनी बार रजनी श्रृंगार करके शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को साथ लेकर आकाश में घूम चुकी है। अर्थात कितने ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष व्यतीत हो चुके हैं, बहुत अधिक समय बीत गया है। न जाने तब से कितनी बार अपना समय आने पर अमावस्या चंद्रमा को चुरा कर ले गई है और न जाने कितनी बार फिर चांदनी उसे लेकर प्रकट हुई है। जब से हम तुम इस रूप के अगम और खिले हुए कानन में मिले हैं तब से मेरी अपलक दृष्टि किसी विस्मय में डूबी रहती है। यह विस्मय इतना अधिक है कि मुझे स्वयं अपनी वाणी का ही अर्थ समझ में नहीं आता। मेरे शब्दों से अर्थ की जो मूर्तियाँ बनती हैं वे तुम्हारी आँखों से उठने वाले क्षीर ज्वार में गलकर खो जाती हैं। अपनी इस विवशता के कारण मैं आनंद से विकल होकर सिहरता हुआ उस वृक्ष की भांति खड़ा रहता हूँ, जिसकी डालियों पर गिलहरियाँ बड़े आनंद के साथ तिलक रही हैं या जिसके पत्तों में छिपकर कोयल बोल रही है। विशेष, समय का नाटकीय एवं संकेतात्मक विवरण। उपमा अलंकार। उर्वशी, जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुदगति से अतीत गहबर में, किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। उदित सूर्य नव से जाने का नाम नहीं लेता था, कल्प बिताए बिना न हटती थी वे काल निशाएं, काम द्रुम तलपड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी छिपकर भी सुध लेने को। निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में, सुख प्रताप का यश का जय का कलियों का फूलों का, मिले अंत में तब जब ललना की मर्याद गंवाकर स्वर्ग लोक की छोड़ भूमि पर स्वयं चली आई मैं। शब्दार्थ, मरद गति से यानी बहुत तेजी से, अतीत गहवर में यानी भूतकाल की गुफा में, कल्प बहुत लंबा समय, इसे ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है, किंतु मानव समय के अनुसार इसमें 4,32,00,000,000 वर्ष होते हैं। काल निशाएं यानी मृत्यु के समान भयानक रातें, काम द्रुम तल यानी कल्प वृक्ष के नीचे, ललना यानी नारी। व्याख्या, उर्वशी कहती है, जब से हम और तुम मिले हैं तब से न जाने समय को क्या हो गया है, क्योंकि यह बड़ी तेजी से भूतकाल की गुफा में छिपा जा रहा है, अर्थात बड़ी जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। लेकिन जब तुम्हें देख कर मैं वापस स्वर्गलोक को गई थी तो यही अजगर के समान दुखद बनकर मेरे प्राणों पर बैठ गया था। सूर्य आकाश में उदय होकर छिपने का नाम भी नहीं लेता था, अर्थात दिन काटना पहाड़ बन जाता था और रातें तो काल के समान भयंकर होती थी तथा कल्प के समान बीतती थी। उन दिनों में मैं कल्प वृक्ष के नीचे गर्म फूलों पर पड़ी हुई तड़पती रहती थी, लेकिन तुम कभी छिप कर ही मेरी सुध लेने नहीं आए। तुम इतने कठोर निष्ठुर निकले कि स्वयं तो महल में बैठे बैठे निश्चिंत होकर सुख प्रताप का, यश का, जय का, कलियों का और फूलों का सुख भोगते रहे और मैं तुम्हारे विरह में एकाकी तड़पती रही। अंत में तुम मुझे मिले जब मैं नारी की मर्यादा को भंग करके तब तथा स्वर्गलोक को छोड़कर स्वयं इस भूलोक पर उतर आई। विशेष मिलन का समय बहुत देरी से, सदयोग का बहुत देरी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। इन पंक्तियों में कवि ने इसी मनोवैज्ञानिक सत्य का निरूपण किया है। उर्वशी के द्वारा उपालंभ के कारण इन दोनों प्रेमियों के प्रेम की गंभीरता की ओर संकेत है। पुरुर्वा चिर कृतज्ञ हूँ इस कृपालुता के हित, किंतु मिलन का इसे छोड़कर और दूसरा कौन पंथ संभव था। उस दिन दुष्ट दनुज के कर से तुम्हें विमोचित करके और छोड़कर तुम्हें तुम्हारी सखियों के हाथों में लौटा, जब मैं राजभवन को लगा देह ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विधिगृह तक पहुंच गई है। छूट गए हैं प्राण उन्हीं उज्ज्वल मेघों के वन में जहां मिली थी तुम क्षीरोदधि में लालिमा लहर से। कई बार चाहा सुरपति से जाकर स्वयं कहूँ मैं, अब उर्वशी बिना यह जीवन भार हुआ जाता है। बड़ी कृपा हो उसे आप यदि भूतल पर जाने दें। परमन ने टोका, क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से। मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा। बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। और कभी यह भी सोचा है जिस सुगंध से छककर विकल वायु बह रही मत होकर त्रिकाल त्रिभुवन की, उस दिगंत व्यापनी गंध की अवयव अमर शिखा को मर्त प्राण की किस निकुंज वीथी में बांध धरेगा। इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में लेकर यह विश्वास, प्रीत मेरी यदि मृषा नहीं है, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा। जलद पुंज को भेद पहुंचकर पारिजात के वन में, वहां अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को। और प्रीत जगने पर तुम वैकुंठ लोक को तजकर किसी रात निश्चय भूतल पर स्वयं चली जाओगी। शब्दार्थ धनुज यानी राक्षस, विमोचित करके अर्थात छुड़ा करके, क्षीरोदध यानी दूध का सागर, लालिमा अर्थात लाली, भिक्षाटन से यानी मांगने से, निमित्त यानी लिए, अंतःपुर से अर्थात भीतर से, अव्यय यानी अखंड, निकुंज वीथि यानी कुंजों की गली, नृषा यानी झूठा, पारिजात यानी कमल, संतप्त यानी वेदनापूर्ण। व्याख्या पुरुर्वा कहते हैं, तुम मेरे कारण स्वर्ग छोड़कर इस भूलोक पर उतर आए, तुम्हारे इस कृपा के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभार मानता हूँ। लेकिन इसके अतिरिक्त मिलन का तुम्हारे लिए और कोई मार्ग ही तो संभव नहीं था। उस दिन राक्षस के हाथों से तुम्हें छुड़ा कर और तुम्हें तुम्हारी सखियों को सौंप कर जब मैं अपने घर वापिस लौटा था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा शरीर तो किसी प्रकार रथ में पड़कर घर तक आ गया है, किंतु मेरे प्राण उन्हीं उज्ज्वल मेघों के वन में छूट गए हैं जहाँ तुम मुझे दूध के सागर में लहर की लालिमा के समान मिली थी। कई बार मन में यह इच्छा हुई कि स्वयं इंद्र से जाकर मैं इस बात को कहूँ कि उर्वशी के बिना यह जीवन अब बोझ बन गया है, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप उर्वशी को भूलोक पर जाने की आज्ञा दे दें। लेकिन मेरे मन ने इस मार्ग को स्वीकार न किया। मेरे मन ने कहा कि क्षत्रिय होकर भीख मांगना उचित नहीं है, और प्रेम भीख मांगने से ही कहीं मिलता है क्या। यदि इंद्र की कृपा से मुझे उर्वशी मिल भी गई तो उसके हृदय का द्वार मेरे लिए कौन खोलेगा। मनुष्य के हृदय में बाहर तो सांकल लगी हुई नहीं है, जब चाह उसे खोल लिया और हृदय में प्रवेश कर लिया। हृदय मंदिर का द्वार तो सदैव भीतर से ही खुला करता है, अर्थात प्रेम भावना का विषय है, थोपे जाने का नहीं। और कभी कभी मैंने यह भी सोचा था कि जिस उर्वशी के तन की सुगंधि तृप्त होकर तीनों कालों की तथा तीनों लोकों की वायु विकल तथा मस्त होकर बह रही थी, उस सर्वत्र व्यापनी सुगंधि की अखंड एवं अमर शिखा को मैं मर्त्य लोक का प्राणी प्राण की किस कुंज गली में संजो कर रख सकूंगा। अर्थात मैंने यह सोचा कि मैं उर्वशी की तुलना में बहुत छोटा हूँ, इसलिए मेरा उससे प्रेम व्यापार नहीं निभ सकता, इसलिए मैं असहाय बनकर महल में बैठा तड़पता रहा। साथ ही मुझे यह विश्वास था कि यदि मेरा प्रेम झूठा नहीं है तो मेरे मन की यह विरह वेदना आकाश के नीचे मर्त्य लोक में नहीं रुक सकेगी, वह बादलों के समूह को भेद कर अवश्य ही कमल के वन में पहुँचेगी तथा यह अवश्य ही तुम्हारे मन को भी वेदना से भर देगी और प्रीति के जगने पर तुम स्वर्ग लोक को तज कर निश्चय ही किसी रात को स्वयं ही इस पृथ्वी पर चली आओगे। उर्वशी, सो तो मैं आ गई किंतु यह वैसा ही आना है अयस्कांत को ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में। पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का जो सुख मिलता उस मनस्विनी वाम लोचनाओं को जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमा पुरुष बलशाली रण से जाते जीत या कि बल सहित हरण करते हैं। नदियां आती स्वयं ध्यान सागर पर कब देता है वेला का सौभाग्य जिसे आलिंगन में भरने को चिर अतृप्त उद्भ्रांत महोदधि लहराता रहता है। वही धन्य जो मानमयी प्रणय के बाहुवलय में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयश था। शब्दार्थ, अयस्कांत अर्थात चुंबक, अयस यानी लोहा, उद्भ्रांत यानी भटकता हुआ, महोदधि यानी महासागर, बाहुवलय यानी बाहुपाश, विक्रम तरंग यानी शक्ति की लहर। व्याख्या, उर्वशी कहती है सो तो मैं आ गई किंतु मेरा यह आगमन ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचकर अपने से चिपका लेती है, लेकिन इस प्रकार के आने में उस प्रकार का तनिक भी आनंद नहीं है जो उन वामाक्षी मनस्विनियों को मिला करता है जिन्हें प्रेम से आवेश युक्त होकर बलवान और विक्रमी व्यक्ति या तो रण में जीत कर लाते हैं अथवा बल सहित उनका हरण करते हैं। नदियां स्वयं आकर सागर में मिल जाती हैं किंतु सागर उन पर कोई ध्यान नहीं देता। वेला का सौभाग्य जिस चिर अतृप्त और भटकते हुए महासागर को आलिंगन में भरने के लिए आकुल रहता है वह महासागर उसकी तनिक ही चिंता न करके लहरें मारता ही रहता है। वही नारी धन्य है जो मानवती और प्रेमिका होते हुए भी अपने प्रेमी के बाहुपाश में स्वयं खींचकर नहीं आई बल्कि अपने प्रेमी की विक्रम लहरों पर चढ़कर आई है, अर्थात जिसे उसके प्रेमी ने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। यदि आपको इंद्र से मांगने का अपयश का डर था तो आपने मेरा हरण क्यों नहीं किया। पुरुर्वा, अयश मूल दोनों विकर्म है हरण हो कि भिक्षाटन, और हरण करता मैं किसका उस सौंदर्य सुधा का जो देवों की शांति इंद्र के दृ की शीतलता थी। नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर न तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को, तब भी प्रतिष्ठान पुरवंदित है सहस्र मुकुटों से और राज्य सीमा दिन दिन विस्तृत होती जाती है। इसी भांति प्रत्येक सुयश सुख विजय सिद्ध जीवन की अनायास स्वयमेव प्राप्त मुझको होती आई है। यह सब उनकी कृपा सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है, झुके हुए हम धनुष मात्र हैं तनी हुई ज्ञापर से किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन फुलक जगाकर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से मन का दीपक बुझा बनाकर तिमिरा छन्न हृदय को, किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को। फिर होता संघर्ष तिमिर में दीपक फिर जलते हैं, रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतर आते हैं। पुंडरिक के सदृश मृत्य जल ही जिसका जीवन है पर तब भी रहता अलिप्त जो सलिल और करदम से, नहीं इतर इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित है उसका किंचित स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है। शब्दार्थ, अयश मूल यानी अपयश के कारण, विक्रम यानी दुष्कर्म, पर के यानी दूसरे के, अनायास यानी सहज ही, ज्या यानी प्रत्यंचा धनुष की डोरी, दारुण यानी कठिन, पुंडरीक यानी कमल, मृत्यु जल यानी मिट्टी और जल, अलिप्त यानी उदासीन, सलिल यानी पानी, करदम यानी कीचड़, इतर यानी दूसरा। व्याख्या, पुरुर्वा कहते हैं चाहे हरण हो या भीख दोनों ही दुष्कर्म और अपयश के कारण हैं, और फिर हरण भी करता तो किसका, क्या उस सौंदर्य सुधा का जो देवों के लिए कांति थी और इंद्र के मन की शीतलता थी। मैंने कभी किसी अन्य राजा के मुकुट पर हाथ नहीं बढ़ाया, अर्थात किसी भी अन्य राजा की स्वतंत्रता छीनकर मैंने कभी भी उसे परतंत्र बनाने की कोशिश नहीं की। न किसी की पृथ्वी छीनने के लिए, राज्य छीनने के लिए मैंने कभी संघर्ष किया। तब भी प्रतिष्ठानपुर की वंदना दूसरे राजा करते हैं, इसकी अधीनता स्वीकार करते हुए और मेरे राज्य की सीमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार प्रत्येक सुयश, सुख, विजय और जीवन की सिद्धि की प्राप्ति मुझे सहज ही अपने आप हो जाती है। यह सब उस भगवान की कृपा है जिसकी रचना यह गूढ़ सृष्टि है। हम तो केवल धनुष के समान हैं जो डोरी के आधार पर झुका है और जिस पर किसी अन्य शक्ति की इच्छा के बाण चला करते हैं। कहने का भाव यह है कि मनुष्य कर्ता नहीं, कर्ता तो अन्य शक्ति ईश्वर है, जिसके इशारे पर मनुष्य की यही प्रवृत्ति निष्काम कर्मयोग कहलाती है। मैं मनुष्य हूँ, कामना की वायु मेरे भीतर बहती है। यह वायु कहीं प्राणों में सिहरन तथा पुलक जगाती हुई मंद गति से बहती रहती है और कभी झंझा की भयानक गति को लेकर डालियों को मरोड़ती हुई बहती है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य में काम वासना कभी अल्प मात्रा में होती है और कभी अधिक मात्रा में होती है। काम वासना का आधिक्य मन के दीपक को बुझाकर हृदय को अंधकार से पूर्ण बना देता है, अर्थात इस अवस्था में मनुष्य में उचितानुचित का विचार नहीं रहता। तब काम वासना मनुष्य के मन के दीपक को बुझाकर अर्थात उसके ज्ञान को नष्ट करके उसके हृदय को अज्ञान के अंधकार से भर जाती है। लेकिन मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार के शासन को स्वीकार नहीं करता, वह अज्ञान रूपी तिमिर से संघर्ष करता है और फिर ज्ञान के दीपक जल उठते हैं। जब रंगों की विविध सौंदर्य की आकुल तरंगे हमको अपने वश में कर लेती हैं तो हम केवल उसमें डूबते ही नहीं बल्कि उसके ऊपर तैरते भी हैं। अर्थात मनुष्य सदा सौंदर्य में डूबा नहीं रहता बल्कि वह कभी कभी उससे ऊपर उठता है। मनुष्य का जीवन उस कमल के समान है जो मिट्टी और जल में उत्पन्न होता है किंतु फिर भी जल में डूबता नहीं बल्कि जल तथा कीचड़ दोनों से ऊपर उठा रहता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन प्रेम और अनुराग है, फिर भी वह इनमें हमेशा के लिए नहीं डूबता, यह यथासमय इनसे ऊपर ही उठ जाता है। दूसरी इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित नहीं है, अनासक्ति के कारण ही प्रेम में थोड़ी बहुत पवित्रता आती है। उर्वशी, यह मैं क्या सुन रही, देवताओं के जग से चलकर फिर मैं क्या फंस गई किसी सुर के ही बाहुबलय में। अंधकार की मैं प्रतिमा हूं, जब तक हृदय तुम्हारा तिमिर ग्रस्त है तब तक ही मैं उस पर राज करूंगी। और जलाओगी जलाओगी जिस दिन मुझे बुझे हुए दीपक को, मुझे त्याग दोगे प्रभात में रजनी की माला सी। शब्दार्थ बाहुबल यानी बाहुपाश, प्रतिमा यानी मूर्ति, तिमिर ग्रस्त यानी अज्ञान से पूर्ण। व्याख्या, महाराज पुरुर्वा की ज्ञान मीमांसा को सुनकर उर्वशी कहती है कि आपके मुख से मैं ज्ञान और अज्ञान का भेद सुनकर आश्चर्य में डूब गई हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं देवताओं के जग से चलकर फिर किसी देवता के बाहुपाश में आकर फंस गई हूँ। मैं तो अंधकार की अज्ञान की मूर्ति हूँ, जब तक तुम्हारा हृदय अज्ञान से भरा हुआ रहेगा तब भी तक तुम पर मेरा आधिपत्य रहेगा, और जिस दिन तुम ज्ञान का दीपक जला लोगे उस दिन तुम मुझे इसी प्रकार त्याग दोगे जिस प्रकार प्रभात में रात की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। कहने का भाव यह है कि नारी के प्रति मनुष्य को आसक्ति तभी तक रहती है जब तक उसके तन पर अज्ञान का आवरण पड़ा रहता है। जब यह आवरण हट जाता है तो मनुष्य नारी को त्याग देता है। विशेष उपमा अलंकार, वह विद्युन्मय स्पर्श तिमिर है पाकर जिसे त्वचा की नींद टूट जाती, रोमों में दीपक बल उठते हैं। वह आलिंगन अंधकार है जिसमें बंध जाने पर हम प्रकाश के महासिंधु में उतराने लगते हैं, और कहोगे तिमिर शूल उस चुंबन को भी जिससे जड़ता की ग्रंथियां निखिल तनमन की खुल जाती हैं। शब्दार्थ विद्युन्मय यानी बिजली के समान झकझोर देने वाला, जड़ता यानी अज्ञानता, निखिल यानी सब। व्याख्या, हे महाराज, तुम यह समझते हो कि नारी का स्पर्श बिजली के समान झकझोर देने वाला अज्ञान है जिसे पाकर शरीर की नींद टूट जाती है और रोमों में दीप जल उठते हैं, अर्थात नारी में सिहरन तथा पुलकन पैदा हो जाती है। आलिंगन उस अंधकार के समान है जिसमें बंध जाने पर प्रकाश के महासागर में उतरने लगते हैं, और तुम यह भी कहोगे कि चुंबन उस तिमिर शूल के समान है जिससे अज्ञानता की तन मन की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। यह भी कैसी दुविधा, देवता गंधों के घेरे से निकल नहीं मधुपूर्ण पुष्प का चुंबन ले सकते हैं, और देह धर्मी नर फूलों के शरीर को तजकर ललचाता है दूर गंध के नफ में उड़ जाने को। अनासक्त तुम कहो, किंतु उस दुविधाग्रस्त मानव की झांकी तुम में देख मुझे जाने क्यों भय लगता है। शब्दार्थ मधुपूर्ण पुष्प यानी यौवन से भरी हुई युवती, देहधर्मी यानी शरीरधारी फूलों के अर्थात तमणियों के। व्याख्या, यह भी कैसी उलझन है कि देवता गंधों के सूक्ष्म भावों के घेरे से निकलकर यौवन से भरी हुई युवतियों का चुंबन नहीं ले सकते और इसके लिए वे सदा ललचाते रहते हैं। इसके विपरीत शरीरधारी मनुष्य रमणियों के आलिंगन को छोड़कर सूक्ष्म भावों के आकाश में उड़ जाने के लिए ललचाते रहते हैं। कहने का भाव यह है कि देवों का प्रेम सूक्ष्म होता है और मनुष्य का स्थूल। देव स्थूल प्रेम के लिए ललचाते रहते हैं और मनुष्य स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म के लिए प्रयत्न करते हैं। चाहे तुम यह मान लो कि अनासक्ति के द्वारा ही प्रेम में पवित्रता आती है, किंतु तुम में मानव मन की इस दुविधा की झांकी देखकर मुझे न जाने क्यों भय लगने लगता है। तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु विषण दूर तुम कहाँ चले जाते हो। बरसाकर पीयूष प्रेम का आंखों से आंखों में, मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। कभी कभी लगता है तुमसे जो कुछ भी कहती हूँ आशय उसका नहीं, शब्द केवल मेरे सुनते हो। शब्दार्थ विषण दुखी, पीयूष यानी अमृत। व्याख्या, तुम शरीर से तो मुझे अपने दृढ़ आलिंगन में कसे हुए हो, किंतु मन से दुखी होकर तुम न जाने मुझसे दूर होकर कहाँ चले जाते हो। तुम आँखों से आँखों में प्रेम का अमृत बरसा कर मुझे देखते हुए न जाने कहाँ जाकर खो जाते हो। कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं तुमसे जो कुछ कहती हूँ उसका आशय तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता, तुम केवल मेरे शब्दों को सुनते रहते हो। क्षण में प्रेम अगाध सिंधु हो जैसे आलोड़न में, और पुनः वह शांति नहीं जब पत्ते भी हिलते हैं। अभी दृष्टि युग युग में के परिचय से उत्फुल्ल हरीसी, और अभी यह भाव गोद में पड़ी हुई मैं जैसे युवती नारी नहीं प्रार्थना की कोई कविता हूँ। शब्दार्थ अगाध यानी अपार, आलोड़न में यानी ज्वार भाटे में, उत्फुल्ल यानी खिली हुई। व्याख्या, एक क्षण में तो तुम्हारा प्रेम ज्वार भाटे में समुद्र की तरह अपार हो जाता है, और क्षण में ही उसमें इतनी शिथिल शांति आ जाती है जिसमें वृक्षों के पत्ते तक भी नहीं होते। कभी तुम्हारी दृष्टि मुझे देखकर इतनी खिली हुई और प्रसन्नता से भरी हुई होती है कि जैसे मेरा तुम्हारा ईगो ईगो से परिचय हो, और कभी यह भाव तुम्हारे मन में आ जाता है जैसे मैं तुम्हारी गोद में पड़ी हुई युवती नारी नहीं बल्कि कोई प्रार्थना की कविता हूँ। विशेष उपमा अलंकार, शमित वहन सुर की शीतलता तो अज्ञात नहीं है, पर ज्वलंत नरभि पर किसका यह अंकुश लटक रहा है। छक्कर देता उसे नहीं पीने जो रस जीवन का, न तो देवता सदृश गंध नभ में जीने देता है। शब्दार्थ शमित वहन यानी शांताग, ज्वलंत यानी जलते हुए। देवताओं की प्रेम की शांति आग शांताग तो ज्ञात है ही, किंतु मनुष्य के जलते हुए प्रेम पर न जाने किसका अंकुश लटक रहा है जो निर्बंध रूप से उसे जीवन का रस छक कर नहीं पीने देता, और न देवताओं के समान उसे गंध के आकाश में जीने ही देता है। कहने का भाव यह है कि प्रेम जगत में मनुष्य की दशा बड़ी ही विचित्र है। वह न तो देवताओं की भांति सूक्ष्म प्यार पर ही निर्भर रह सकता है और न खुलकर स्थूल प्रेम ही कर सकता है। पुरुर्वा, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस दृशा उस वेदना को जानता। आग है कोई नहीं जो शांत होती और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। शब्दार्थ दृशा यानी प्यास। पुरुर्वा कहता है कि मनुष्य के प्रेम पर किसका अंकुश लगा हुआ है इसे तो मैं भी नहीं पहचानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि सरोवर के किनारे कंठ में एक प्रकार की प्यास वेदना लगी हुई है। अर्थात यह बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि साधन होने पर भी साध्य सिद्ध नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ कि मनुष्य के जीवन में कोई ऐसी आग लगी हुई है जो न तो शांत ही होती है और न खुलकर आदमी को खेलने ही देती है, बल्कि खुलकर खेलने से होने अंतर दूर भागती रहती है। विशेषोक्ति अलंकार, रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे ही रुधिर की वहनी मुझको शांत से जीने न देती। हर घड़ी कहती उठो इस चंद्रमा को हाथ से धड़कर निचोड़ो, पान कर लो यह सुधा मैं शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। शब्दार्थ रूप का यानी यौवन का, रसमय यानी आनंदपूर्ण, वहनी यानी आग, उद्भ्रांत होंगी यानी भटकूंगी। व्याख्या मेरी समझ में नहीं आता कि यह यौवन का आनंदपूर्ण निमंत्रण है अथवा मेरे ही खून की आग है तुम्हें शांति से नहीं जीने देती। वह हर समय मुझसे कहती रहती है कि उठो और इस चंद्रमा को हाथ में धड़कर निचोड़ लो, चंद्रमा का अमृत पान कर लो, तभी मैं शांत होंगी और फिर आगे कभी भी नहीं भटकूंगी। किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूं अधर को, घूंट या दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यह आता, अभी तक भी न समझा। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। शब्दार्थ अधर यानी होठ, पेय यानी पीने का पदार्थ, रक्त यानी शरीर। व्याख्या लेकिन ज्यों ही मैं रस के पात्र को अपने होठों से लगाता हूँ और घूंट या दो घूंट पीता हूँ, तभी न जाने हृदय के किस कोने से मुझे आवाज़ सुनाई देती है कि हे पुरुरवा तू अभी तक भी नहीं समझा कि जो सौंदर्य केवल दृष्टि का पेय है, पदार्थ है, अर्थात जो केवल निहारने के लिए है, वह शरीर का भोजन, स्पर्श का विषय नहीं है। आलिंगन करना सौंदर्य की पूजा करना नहीं है, भाव यह है कि सौंदर्य का उपभोग केवल आँखों से करना चाहिए, शरीर स्पर्श से नहीं। विशेष यही भाव अंग्रेजी की इस पंक्ति में निहित है, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। टूट गिरती है उमंगे बाहुओं का पाश हो जाता शिथिल है, अप्रतिम मैं फिर उसी दुर्गम जलधि में डूब जाता, फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही प्रेक्षा चिंतन। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। शब्दार्थ अप्रतिम आश्चर्यचकित होकर, उद्विग्न यानी आकुलता से भरा हुआ, प्रेक्षा यानी प्रश्न, चिरंतन यानी पुराने। व्याख्या इस शब्द को सुनकर मेरी सारी उमंगें नष्ट हो जाती हैं और मेरी बाहुओं का पाश ढीला हो जाता है, फिर मैं आश्चर्यचकित होकर उसी दुर्गम सागर में डूब जाता हूँ। मेरे मन में फिर से वही आकुलता से भरा हुआ चिंतन आरंभ हो जाता है, वही पुराना प्रश्न सामने आ जाता है कि यदि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है तो और क्या है, रस चुंबन यदि प्रेम का सौंदर्य के लिए उपहार नहीं है तो और क्या है। यह क्या है कहने का भाव यह है कि यदि प्रेम की चरम परिणति आलिंगन नहीं है, शरीर का स्थूल भोग नहीं है तो और क्या है। रक्त की उत्तप्त लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूं भेद उसका जान लूं, पंथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में यदि शून्य की उस रेख को पहचान लूं। रक्त यानी खून, उत्तप्त यानी गर्म, परिधि यानी सीमा, व्योम यानी आकाश, रेख यानी रेखा। व्याख्या खून की गर्म लहरों की सीमा के पार अर्थात उत्तेजना के अतिरिक्त यदि कहीं कोई सत्य है तो मैं चाहता हूं कि उनके भेद का पता लगा लें। सौंदर्य की पूजा का मार्ग यदि आकाश में भी है तो मैं वहां से ही उसकी सूनी रेखा को पहचानना चाहता हूं। कहने का भाव यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रेम की पूजा का क्या मार्ग है, फिर वह मार्ग चाहे जितना कठिन हो मैं अवश्य उसको प्राप्त करके रहूंगा। पर जहां तक भी उड़ू इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, मृत्यु महद आकाश में ठहरे कहां पर, शून्य है सब और नीचे भी नहीं संतोष, मिट्टी के हृदय में दूर होता ही कभी अंबर नहीं है। शब्दार्थ मृत्यु यानी मिट्टी, मर्त्यलोक का प्राणी, महदाकाश यानी विशाल आकाश। लेकिन चाहे वहां मैं उड़ूं इस प्रश्न का कि सौंदर्य की आराधना का मार्ग क्या है, कोई उत्तर नहीं मिलता है। मिट्टी यानी संसार का प्राणी आखिर विशाल आकाश में कब तक ठहर सकता है, उसके लिए तो सब शून्य ही शून्य है और इस मर्त्यलोक में भी संतोष नहीं होता, क्योंकि सांसारिक प्राणी के मन में गगनचुंबी कल्पनाएं उड़ाने से कभी दूर नहीं होती। इस व्यथा को झेलता आकाश की निस्सीमता में घूमता फिरता विकल विभ्रांत, पर कुछ भी न पाता, प्रश्न जो करता गगन की शून्यता में गूंज कर सब ओर मेरे ही श्रवण में लौट आता। निस्सीमता से यानी असीमता से विभ्रांत यानी भटका हुआ, श्रवण यानी कान। व्याख्या, आकाश की इस असीमता में इस पीड़ा को सहन करता हुआ मैं विकल और भटक कर घूमता हूँ, लेकिन कुछ ही प्राप्त नहीं होता। मेरे मन में जो प्रश्न उत्पन्न होता है और वह सब ओर से गगन के सूनेपन में गूंज कर भी वापस मेरे कानों में लौट आता है। और इतने में महिका गान फिर देता सुनाई, हम वही जगह है जहाँ पर फूल खिलते हैं, दूब है शैया हमारे देवता की, पुष्प के वे कुंज मंदिर हैं जहाँ शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंठकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। शब्दार्थ, हरित यानी हरा, कंठकित यानी रोमांचित। और इतने में पृथ्वी का यह गीत सुनाई देता है कि पृथ्वी पर भी ऐसा संसार बसा हुआ है जहाँ पर फूल खिलते हैं, हमारे देवता के शैया हरी हरी दूब है, और यहीं पर फूलों के कुंज मंदिर हैं जहाँ प्रकृति के शीतल हरे और एकांत मंडप में रोमांचित युवती और युवक निर्बंध होकर आपस में मिलते हैं। इन कपोलों की ललाई देखते हो और अधरों की हंसी, यह कुंद सी जूही कली सी, गौर चंपक यष्टि सी, यह देह शत पुष्पाभरण से स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी। शब्दार्थ, ललाई नहीं लालिमा, चंपक यष्टि सी यानी चंपा की लता के समान, श्लथ यानी शिथल, पुष्पाभरण यानी फूलों के गहने। व्याख्या, पृथ्वी के गीत में मुझे यह भी सुनाई पड़ता है कि इन कपोलों की लाली देखते हो, इन अधरों की कुंद सी जूही की कली के समान हंसी देखते हो, इस गोरी चंपा की लता के समान फूलों के गहनों से के भार से शिथिल हुई तथा कला के स्वप्न के सांचे में ढली हुई सी सोने की मूर्ति के समान इस देह को देखते हो, यह तुम्हारी कल्पना है, प्यार कर लो। रूपसी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर, ओ गगनचारी यहाँ मधुमास छाया है, भूमि पर उतरो कमल कर्पूर कुमकुम से कुटत से इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। शब्दार्थ, रूपसी यानी रूपवती, मधुमास यानी बसंत ऋतु, कर्पूर यानी कपूर, कुमकुम यानी केसर रोली, कुटज यानी इंद्र जौ। व्याख्या, पृथ्वी के गीत में मुझे यह सुनाई पड़ता है कि जैसे मेरे लिए संबोधित करके कहा जा रहा है, यह तुम्हारी कल्पना है, अपनी कल्पना को छोड़ो नहीं बल्कि प्यार से संभाल कर रखो। रूपवती नारी इस सृष्टि का सबसे मनोहर चित्र है और आकाश में विचरण करने वाले यहाँ पृथ्वी पर बसंत की ऋतु छाया है, इसीलिए महदाकाश की कल्पना को छोड़कर भूमि पर उतरो और कमल कपूर केसर तथा कुटद से इस अपार सौंदर्य का श्रृंगार कर दो। गीत आता है मही से या कि मेरे ही रुधिर का राग यह उठता गगन में, बुलबुलों सी फूटने लगती मधुर स्मृतियां हृदय में, याद आता है मधुर उल्लास में फूला हुआ वन, याद आते हैं तरंगित अंग के रोमांच कंपन, स्वर्ण वर्णावल्लरी में फूल से खिलते हुए मुख, याद आता है निशा के ज्वार में उन्माद का सुख, कामनाएं प्राण को हिलकोरती हैं चुंबनों के चिन्ह जत पड़ते त्वचा में। मदर यानी मादक, उल्लास यानी हर्ष, तरंगित यानी यौवन की लहरों से भरा हुआ, स्वर्ण वर्णा यानी सोने के समान रंग वाली, वल्लरी यानी लता, त्वचा यानी खाल, यहाँ शरीर से तात्पर्य है। व्याख्या, मुझे यह ज्ञान नहीं होता कि यह गीत पृथ्वी से फूटता है या मेरे ही खून का गीत आकाश में गूंजने लगता है। इस गीत के सुनते ही हृदय में बुलबुलों के समान मधुर स्मृतियाँ फूटने लगती हैं, मादक हर्ष में फूला हुआ वन याद आ जाता है, अंग के रोमांच और कंपन याद आने लगते हैं, और सोने के समान रंग वाली लता में फूल की भांति खिलते हुए मुख का स्मरण हो जाता है तथा रात्रि की गहनता में उन्माद का सुख याद आने लगता है, तब कामनाएं प्राणों को झकझोरने लगती हैं और शरीर में चुंबनों के चिन्ह उभर आते हैं, फिर किसी का स्पर्श पाने को तृषा चित्कार करते, मैं न रुक पाता कहीं फिर लौट आता हूँ, पिपासित शून्य से साकार सुषमा के भुवन में, युद्ध से भागे हुए उस वेदना विह्वल युवक सा जो कहीं रुकता नहीं, बेचैन जागिरता अकुंठित तीर सा सीधे प्रिया की गोद में। शब्दार्थ, तृण यानी घास, पिपासित यानी प्यासा, अकुंठित यानी निर्बाध। व्याख्या, इस प्रकार की घटनाओं की याद आते हैं, मेरे मन की घास फिर किसी का स्पर्श पाने के लिए चित्कार कर उठती है, लेकिन मैं कहीं भी तो नहीं रुक पाता और शून्य से साकार शोभा भुवन में प्यासा ही लौट आता हूँ, युद्ध से भागे हुए वेदना से विह्वल इस युवक की भांति जो कहीं भी नहीं रुकता बल्कि निर्बाध गति से बेचैन होकर सीधा तीर की भांति अपनी प्रिया की गोद में जा गिरता है। विशेष उपमा अलंकार। चूमता हूँ दूब को, जल को, प्रसूनों पल्लवों को, वल्लरी की बाह भर उरसे लगाता हूँ, बालकों सा मैं तुम्हारे वक्ष में मुँह को छिपा कर नींद के निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। शब्दार्थ प्रसूनों को यानी फूलों को, पल्लवों को यानी पत्तों को, वल्लरी यानी बेल, निस्तब्धता यानी खामोशी। व्याख्या। तब मैं भावावेश में आकर डूब को, जल को, फूलों को, पत्तों को चूमता हूँ और लता को बाह में भर कर हृदय से लगाता हूँ, फिर बालकों की तरह तुम्हारे वक्ष में अपना मुंह छिपाकर मैं नींद की खामोशी में डूब जाता हूँ। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है। किंतु जगकर देखता हूँ कामनाएं वर्तिकासी बल रही हैं, जिस तरह पहले पिपासा से विकल थी प्यास से आकुल अभी भी जल रही हैं, रात भर मानो उन्हें दीपक सदृश जलना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो। शब्दार्थ स्रोत यानी झरना, श्यामल यानी काला, वर्तिकासी यानी बत्ती के समान। व्याख्या। नींद पानी का झरना, गहरी छाया, काला मेघ और शीतल पवन के समान है, लेकिन जब मैं जग जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी इच्छाएं बत्ती के समान जल रही हैं और वे अभी भी प्यास से व्याकुल होकर उसी प्रकार जल रही हैं जैसे पहले भी वे प्यास से व्याकुल थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्हें रात भर दीपक के समान जलना पड़ा हो या नींद में उन्हें किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो। विशेष उल्लेख, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर छुतित होकर कोई अतिथि आवाज देता, फिर अधरपुट खोजने लगते अधर को, कामना छूकर त्वचा को फिर जगाती है, रेंगने लगते सहस्रों सांप सोने के रुधिर में, चेतना रस की लहर में डूब जाती है। शब्दार्थ क्षुधित यानी भूखा। व्याख्या। फिर कोई भूखा अतिथि, यहाँ मन से तात्पर्य है, आवाज देता है, अर्थात मन में उत्तेजना आ जाती है और फिर चुंबन के लिए अधर अधर को खोजने लगते हैं, फिर कामना शरीर को छूकर जागृत कर देती है और खून में सोने के सैकड़ों सांप रेंगने लगते हैं, तब चेतना रस की धार में डूब जाती है और तब सहसा न जाने ध्यान खो जाता कहाँ पर, सत्य ही रहता नहीं यह ज्ञान, तुम कविता कुसुम या कामनी हो, आरती की ज्योति को भुज में समेटे मैं तुम्हारी ओर अपलक देखता एकांत मन से, रूप के उद्गम अगम का भेद गुनता हूँ, सांस में सौरभ तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है, सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से और अंगों की युहा की वीचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। शब्दार्थ भुज यानी बाह, अपलक यानी निर्णमेश दृष्टि, उद्गम यानी उत्पत्ति स्थान, वीचियों से यानी लहरों से। व्याख्या। हे उर्वशी, और तब न जाने सहसा मेरा ध्यान कहाँ पर खुल जाता है। यह सत्य है कि उस समय मुझे यह ध्यान नहीं रहता कि तुम कविता हो, कामनी हो या कुसुम हो, मैं तुम्हें आरती की ज्योति के समान अपनी भुजाओं में लपेट कर एकाग्र मन से तथा निर्निमेष दृष्टि से देखता रहता हूँ और तुम्हारे अगम्य रूप की उत्पत्ति के स्थान के विषय में सोच विचार करता हूँ, तुम्हारी सांसों में सुगंधित रूप में संगीत भरा हुआ है, तुम्हारी सांसों से निकली हुई लहर की भीनी सुगंधि से मैं अपने प्राणों को सींचता हूँ और अंगों की शोभा को लहरों से एक रूप होकर तुम्हारे रंग का संगीत सुना करता हूँ। और फिर यह सोचने लगता कहाँ, किस लोक में हूँ, कौन है यह वन सघन हरियालियों का, झूमते फूलों लचकती डालियों का, कौन है यह देश जिसकी स्वामिनी मुझको निरंतर वारुणी की धार से नहला रही है, कौन है यह जग समेटे अंक में ज्वालामुखी को चांदनी चमकार कर बहला रही है। शब्दार्थ वारुणी यानी शराब, अंक यानी गोद। व्याख्या। तुम्हारे रूप रंग में स्वयं को भुलाकर मैं फिर यह सोचने लगता हूँ कि न जाने इस समय मैं किस लोक में, यह सघन हरियालियों का वन कौन है जिसमें झूमते हुए फूल तथा लचकती हुई डालियाँ हैं, वह देश कौन है जिसकी स्वामिनी मुझे निरंतर शराब की धारा से नहलाती है अर्थात मुझे सदैव मदोन्मत्त बनाए रखती है, वह जगत कौन है जिसने अपनी गोद में ज्वालामुखी को समेट कर चांदनी पुचकार कर बहला रखी है। कौमुदी के इस सुनहले जाल का बल तोलता हूँ, एक पल उड्डीन होने के लिए पर खोलता, पर प्रभंजन मत्त है इस भांति रस आमोद में, उड़ न सकता लौट गिरता हूँ कुसुम की गोद में। टूटता तोड़े नहीं यह किस लयों का दाम, फूलों की लड़ी जो बंध गई खुलती नहीं है। कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, खींच लेती है तृषा पीछे पकड़ कर बाह मेरी। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। कौमुदी यानी चांदनी, उड्डीन यानी उड़ान, प्रभंजन यानी तूफान, उद्दाम यानी प्रबल, संबल यानी सहारा। व्याख्या, जब चांदनी के इस सुनहरे जाल का बल तोलता हूँ तो मुझे इसके प्रति ऐसा आकर्षण होता है कि मैं एक पल के लिए इसमें उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को खोल देता हूँ। लेकिन तूफान इस प्रकार के रस आमोद में बाधक होता है, इसलिए मैं उसकी बाधा के कारण उड़ नहीं पाता और लौटकर फूल की गोद में गिर पड़ता हूँ। किस लयों का दाम तोड़े नहीं टूटता, और फूलों की लड़ी जो बन जाती है फिर खोले से नहीं खुला करती। कामनाओं के झोंके मेरी राह रोकते हैं, और प्यास यानी क्या काम प्यास मेरी बाँह पकड़कर मुझे पीछे की ओर खींच लेती है। सागर की तरह से प्रबल मेरा बल भी नहीं है, जिस शक्ति का जय जयकार यह जगत गूंजता रहता है, उस अटल शक्ति का सहारा कहाँ है। यह शिला सावक्ष चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत करुड़ गजराज का बल है। मर्त्यमानों की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूं। शब्दार्थ, कौमुदी, वक्ष यानी छाती, आलोक यानी ज्योति, समुन्नत यानी उभरा हुआ, व्याल यानी सर्प, मारुत यानी पवन, तुर्य यानी विजय शंख, पावक यानी आग, स्यंदन यानी रथ। व्याख्या, मेरी छाती शिला के समान कठोर है, मेरी भुजाएं चट्टान के समान है, मेरा उभरा हुआ भाल सूर्य के समान प्रकाशित है, मेरे प्राणों का सागर अगम उत्ताल और निरंतर छलकने वाला है। मेरे सामने सिंह नहीं ठहरते, मेरे भय से पर्वत हिलने लगते हैं, काल रूपी सर्प कुंडली मारकर कांपने लगता है, मेरी भुजाओं में पर्वत गरुड़ और गजराज का बल है। मैं मर्त्यलोक के निवासी मानव के विजय का शंखनाद हूँ, हे उर्वशी मैं अपने समय का सूर्य हूँ। मैं अंधकार के मस्तक पर अग्नि जलाता हूँ और बादलों के सिरों पर रथ चलाता हूँ। कहने का भाव यह है कि मेरे पास अपार शक्ति है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। शब्दार्थ, आयुध यानी शस्त्र, फूल यानी नारी सौंदर्य, बंकिम यानी तिरछे। व्याख्या, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह क्या बात है कि जो पुरुष यानी मैं इंद्र के शस्त्र के कठिन प्रहार को झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, वही नारी सौंदर्य क्या जा सहाय हो जाता है, और अपार शक्ति के रहते हुए भी वह निरुपाय हो जाता है, वह तिरछे नयनों के बाणों से आसानी से बिंध जाता है और रूपवती नारी उसे अपनी मुस्कान से जीत लेती है। मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। खग यानी पक्षी, सर यानी तालाब, हे उर्वशी मैं तुम्हारे बाण के द्वारा बीधा हुआ पक्षी हूँ, इसलिए तुम्हारे ही वक्ष पर अपना शीश रखकर मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का नीला कमल हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें प्राणों के तालाब में उतर जाऊँ। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूँगा, बाहुओं के इस वलय में गाप रही बंदी नहीं है, वक्ष के स्थल पर सोती न केवल देह, मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। वलय यानी पाश, गात्र यानी शरीर, तल्प यानी शैया। व्याख्या, यह सब झूठ है कि मैं तुम्हें छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा, वास्तविकता तो यह है कि तुम्हारी भुजाओं के इस पाश में केवल मेरी देह ही नहीं, सोती बल्कि मेरे व्यग्र अव्याकुल प्राणों को भी यहां विश्राम मिलता है। मर्त नर को देवता कहना निशा है, देवता शीतल मनुज अंगार है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। घुर्णियां चिंगारियों की नाचती हैं, नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों से हवा में, मानवों का मन गले पिघले अनल की धार है। शब्दार्थ, मर्त नहीं नश्वर, नृषा नहीं झूठ, घुर्णियां नहीं लपटें, दहन यानी आग, अनल यानी आग। व्याख्या, नश्वर मनुष्य को देवता कहना झूठ है, क्योंकि देवता तो शीतल होते हैं, जबकि मनुष्य दहकते हुए अंगारे के समान होता है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें नहीं उठा करती, जबकि मनुष्य के खून में ज्वालामुखी सुलगा करता है। चिंगारियों की लपटें नाचा करती हैं, हवा में पत्तों से आग के टुकड़े नाच नाच कर उड़ा करते हैं। आदमियों का मन आग की धार के समान होता है, जो गलता और पिघलता है। चाहिए देवत्व, पर इस आग को धर दूं कहां पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर। वहनिका बेचैन यह रसकोश, बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष, बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है। शब्दार्थ, विसर्जित करना नहीं छोड़ना, व्योम यानी आकाश। व्याख्या, यह सच है कि मैं देवत्व चाहता हूं, किंतु मुझ में जो मानव सुलभ आग है उसे कहां पर रख दूं, कामनाओं को किस आकाश में त्याग कर रख दूं। बताओ तो सही कि आग का यह रसकोश मुझसे कौन ग्रहण करेगा, और मेरी आग के बदले मुझे संतोष कौन देगा। मेरे इन प्रश्नों को सुनकर दिशाएं फिर से मौन हो गई हैं, और फिर उनके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। प्राण के चिरसंगनी यह वहनी, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। वहनी यानी आग। व्याख्या, प्राण की इस चिरसंगनी आग को साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। इस मर्त लोक के प्राणी का यह कैसा दुर्भाग्य है कि जब तक उसे प्रेम की धारा नहीं मिलती, तब तक वह अपनी ही आग में जलता रहता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को जब तक मनचाहा प्रेम नहीं मिलता, तब तक वह अत्यंत वेदना से छटपटाता रहता है। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादंबनी सिर पर तुम्हारी छांह है। एक ही सुख है उरस्थल से लगा हूं, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाह है। शब्दार्थ, सजल जल से भरी हुई, कादंबनी यानी मेघमाला, ग्रीव यानी ग्रवा गर्दन। व्याख्या, ओ पानी से भरी हुई मेघशाला, इस मरुस्थल की तपन में केवल एक ही आशा है, और वह मेरे सिर पर तुम्हारी छाया है, अर्थात इस जीवन के दुखों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे सहारे के अतिरिक्त मेरी और कोई आशा नहीं। केवल एक ही स्थान पर मुझे सुख मिलता है, और वह स्थान है तुम्हारे उस स्थल से लगना, अर्थात अपनी गर्दन के नीचे तुम्हारी बांह का होना। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों ने मुझे शाश्वत शरण दिया। गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ, प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। शब्दार्थ, प्रफुल्लित खिले हुए, प्रसन्न शाश्वत यानी अमर। व्याख्या, हे उर्वशी, अपने फूलों के समान खिले हुए प्राणों में तुम मुझे अमर शरण दो, क्योंकि मैं गंध के लोक से बाहर जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे रक्त के कणों में समा जाऊँ और प्रार्थना के गीत गाऊं। उर्वशी, स्वर्ण नदी सत्य ही, वह जिसमें उर्मिया नहीं, खरताप नहीं, देवता शेष जिसके मन में कामना द्वंद परिताप नहीं। पर ओ जीवन के चटुल वेग, तू होता क्यों इतना कातर, तू पुरुष अभी तक गरज रहा जब तक भीतर यह वश्वागर। जब तक यह पावक शेष, तभी तक सखा मित्र त्रिभुवन तेरा, चलता है भूतल छोड़ बादलों के ऊपर स्यंदन तेरा। उर्मिया यानी लहरें, खर यानी प्रखर प्रबल, ताप यानी गर्मी, परिताप यानी दुख, चटुल यानी चंचल, कातर यानी दुखी, वैश्वानर यानी अग्नि, स्यंदन यानी रथ। व्याख्या, उर्वशी महाराज पुरुर्वा को संबोधित करते हुए कहती है कि निश्चित रूप से वह स्वर्ण नदी सत्य है, जिसमें लहरें नहीं होती और प्रखर गर्मी नहीं होती। वही यथार्थ रूप में देवता है, जिसके मन में कामना द्वंद्व और दुख नहीं होते। हे जीवन के चंचल वेग, तू क्यों इतना दुखी हो रहा है? तू अभी तक पुरुष है, तू तभी तक पुरुष है जब तक तेरे भीतर प्रेम की आग जल रही है। जब तक यह आग शेष है तभी तक त्रिभुवन तेरा सखा है, और तभी तक तेरा रथ पृथ्वी छोड़कर बादलों के ऊपर चलता है। जब तक यह पावक शेष तभी तक सिंधु समादर करता है, अपना मस्तक मणि रत्न कोश चरणों पर लाकर धरता है। पथ नहीं रोकते सिंह राह देती है सघन अरण्यानी, तब तक ही शीश झुकाते हैं सामने प्रांशु पर्वत मानी। सुरपति तब तक ही सावधान रहते बढ़कर अपनाने को, अप्सरा स्वर्ग से आती है अधरों का चुंबन पाने को। शब्दार्थ समादर यानी आदर, अरण्यानी यानी वन, प्रांशु यानी ऊंचा। व्याख्या, हे मनुष्य, जब तक तेरे जीवन में प्रेम की आग शेष है तभी तक सागर उसका आदर करता है और अपना समस्त मणि और रत्नों का खजाना उसे समर्पित करता है। तभी तक शेर उसका मार्ग नहीं रोकते तथा वन अपने बीच में उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। तभी तक सामने खड़े हुए अधिकारी तथा ऊंचे पर्वत उसे सिर झुकाते हैं। तब तक ही इंद्र भी सावधान होकर उसे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, और तभी तक उसके अधों का चुंबन प्राप्त करने के लिए स्वर्ग से उसके पास अप्सराएं आती हैं। जब तक यह पावक शेष तभी तक भाव द्वंद्व के जगते हैं, बारी बारी से मही स्वर्ग दोनों ही सुंदर लगते हैं। मरघट की आती याद तभी तक फुल प्रसूनों के वन में, सोने शमशान को देख चमेली यूं ही फूलती है मन में। शैया की याद तभी तक देवालय में तुझे सताती है, और शयन कक्ष में मूर्ति देवता की मन में फिर जाती है। शब्दार्थ द्वंद्व यानी संघर्ष, फुल प्रसूनों के यानी खिले हुए फूलों के, देवालय यानी मंदिर अथवा स्वर्गलोक। व्याख्या, हे मनुष्य, जब तक तेरे मन में प्रेम की आग शेष है तभी तक तेरे मन में संघर्ष के भाव उठते हैं। तभी तक बारी बारी से पृथ्वी और आकाश, भूलोक तथा स्वर्गलोक सुंदर दिखाई देते हैं। खिले हुए फूलों के वन में तभी तक मरघट की याद आती है, सूने मरघट को देखकर तभी तक मन में चमेली और जूही की कल्पना साकार होती है। देवालय में तभी तक सेज की याद आती है, और तभी तक शयन कक्ष में देवता की मूर्ति मन में बसती है। किल विष के मल का लेश नहीं यह शिखा शुभ्र पावक केवल, जो किए जा रहा तुझे दग्ध कर क्षण क्षण और अधिक उज्ज्वल। जितना ही यह खर अनल ज्वार शोणित में उमह उबलता है, उतना ही यौवन अग्रुदीप्त कुछ और धधक कर जलता है। मैं इसी अग्रु की तप्त मधुमय गंध पीने आई, निर्जीव स्वर्ग को छोड़ भूमि की ज्वाला ने जीने आई। शब्दार्थ किल विष यानी पाप, मल यानी कलंक, शुभ्र यानी पवित्र, अनल ज्वार यानी आग का प्रवाह, शोणित यानी खून, अगुरु यानी हल्का। व्याख्या, यह प्रेम की शिखा केवल पवित्र आग है, इसमें तनिक भी पाप का कलंक नहीं। यही आग मुझे प्रति क्षण जलाकर और अधिक उज्ज्वल किए जा रही है। इस आग का प्रखर प्रवाह जितना अधिक मेरे खून में उबलता है, उतना ही अधिक मेरा हल्का यौवन दीप्त होकर जलता है। मैं इसी हल्की वेदना के सिहरन को प्राप्त करने के लिए तथा मधुमयी गंध पीने के लिए निर्जीव स्वर्गलोक को छोड़कर इस भूमि पर इसी आग को लिए जीने के लिए आया हूँ। बुझ जाए मृत्यु का अनल स्वर्गपुर का तू इतना ध्यान न कर, जो तुझे दीप्त से सजती है उस ज्वाला का अपमान न कर। तू नहीं जानता इसे वस्तु जो इस ज्वाला में खिलती है, सुर क्या सुरेश के आलिंगन में भी न कभी वह मिलती है। यह विकल व्यग्र विह्वल प्रहर्ष सुर की सुंदरी कहाँ पाए, प्रज्वलित रक्त का मधुर स्पर्श नभ की अप्सरी कहाँ पाए। मृत्यु का अनल यानी मृतलोक की प्रेम आग, दीप्त यानी ज्योति। व्याख्या, उर्वशी महाराज पुरुर्वा को समझाती हुई कहती है कि हे महाराज, तुम यह चाहते हो कि मृतलोक की आग बुझ जाए, इस बात का तथा स्वर्गलोक का ध्यान नहीं करना चाहिए। यही आग तो तुम्हें प्रकाश से भरती है, इसलिए तुम्हें इस आग का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम इस आग के स्वरूप को नहीं समझ सके हो। इस प्रेम की आग में जिस वस्तु का जन्म होता है, वह देवता तो क्या इंद्र के आलिंगन में ही कहीं प्राप्त नहीं होती। इस प्रेम के कारण मेरे मन में जो विकलता, व्यग्रता, विह्वलता तथा हर्ष से विविध भाव आ रहे हैं, वे देवताओं की सुंदरियों को कभी नहीं मिल सकते। स्वर्गलोक में रहने वाली अप्सरा जलते हुए खून का मधुर स्पर्श पा भी कहां सकती है। वे रक्तहीन शुचि सौम्य पुरुष अंबरपुर के शीतल सुंदर, दे उन्हें किंतु क्या दान स्वप्न जिनके लोहित संतप्त प्रखर। यह तो नर ही है एक साथ जो शीतल और ज्वलित भी है, मंदिर में साधक व्रती पुष्पवन में कंदर्प ललित भी है। योगी अनंत चिन्मय अरूप को रूपायित करने वाला, भोगी ज्वलंत रमणी मुख पर चुंबन अधीर धरने वाला। शब्दार्थ रक्तहीन यानी खून से रहत अर्थात निर्जीव से, शुचि यानी पवित्र, अंबरपुर यानी स्वर्गलोक, लोहित यानी लाल खून से भरे, कंदर्प यानी काम, ललित यानी सुंदर। व्याख्या देवताओं और मनुष्यों की पारस्परिक तुलना करते हुए उर्वशी महाराज पुरुर्वा से कहती है कि हे महाराज, देवता निर्जीव से पवित्र, भव्य स्वर्ग से फूल, शीतल या सुंदर अवश्य होते हैं, किंतु उनके स्वप्न लोहित संतप और प्रखर होते हैं, अतः उन्हें हम किस प्रकार प्रेम का दान दें। इसके विपरीत मनुष्य में एक ही साथ शीतलता और आग होती है। वे मंदिर में साधक व्रती होते हैं तो पुष्प वन में सुंदर कामदेव के समान होते हैं। वे योगी हैं जो अनंत चिन्मय तथा अरूप ब्रह्म को साकार बनाने वाले होते हैं। वे ज्वलंत भोगी बनकर रमणी के मुख पर अधीरता से चुंबन अंकित करने वाले भी होते हैं। कहने का भाव यह है कि मनुष्य देवताओं से प्रेम जगत में अत्यधिक श्रेष्ठ होते हैं। देवता केवल शीतलता के प्रतीक हैं, जबकि मनुष्यों में सम तथा विषम सही प्रकार के गुण उपलब्ध होते हैं। मन की असीमता में निबद्ध नक्षत्र पिंड ग्रह दिशाकाश, तन में रसस्विनी की धारा मिट्टी की मृद सौंधी सुवास। मानव मानव ही नहीं अमृत नंदन यह लेख अमर भी है, वह एक साथ जल अनल वृत्ति महदंबर क्षर अक्षर भी है। शब्दार्थ निबद्ध यानी बंधे हुए, रसस्विनी यानी प्रेम नदी, अमृत नंदन यानी अमृत के समान आनंद देने वाला, जल अनल पानी और आग, मृत्यु महदंबर मिट्टी और विशाल आकाश, क्षर अक्षर तथा नश्वर तथा अमर। व्याख्या मनुष्य के मन की असीमता में नक्षत्र पिंड ग्रह और दिशा तथा आकाश बंधे हुए हैं। तन में प्रेम की नदी की धारा बहती है जिसमें मिट्टी की सुंदर और सौंधी सुगंधी बसी हुई है। मानव मानव ही नहीं बल्कि आनंद देने वाला एक अमर लेख भी है। यह एक ही साथ पानी आग मिट्टी और विशाल आकाश तथा नश्वर और अमर भी है। तू मनुज नहीं देवता कांति से मुझे मंत्र मोहित कर ले, फिर मनुज रूप धर उठा गाढ़ अपने आलिंगन में भर ले। मैं दो विटपों के बीच मग्न नन्ही लतिका सी सो जाऊं, छोटी तरंग सी टूट उरस्थल के महिद्र पर खो जाऊं। शब्दार्थ कांति यानी शोभा, विटपों के यानी वृक्षों के, महिद्र यानी पर्वत। व्याख्या तू मनुष्य नहीं देवता है, इसलिए अपनी शोभा से मुझे मंत्र मोहित कर ले, क्योंकि देवता मंत्रों से ही मोहित करते हैं। फिर मनुष्य रूप धारण करके और मुझे उठाकर अपने गाढ़े आलिंगन में भर ले। तुम्हारी भुजा रूपी दो वृक्षों के बीच डूबकर मैं छोटी सी बेल के समान सो जाऊं और छोटी लहर के समान टूट कर तुम्हारे हृदय के पर्वत में खो जाऊं। कहने का भाव यह है कि मैं तुम्हारे बाहुपाश में बंध कर अपने को भूल जाऊं। विशेष अपनहुति और उपमा अलंकार। आ मेरे प्यारे त्रिशत शांत अंतः सर में मज्जित करके, हर लूंगी मन की तपन चांदनी फूलों से सज्जित करके, रसमयी मेघमाला बनकर मैं तुझे घेर छा जाऊंगी, फूलों की छाह तले अपने अधरों की सुधा पिलाऊंगी। शब्दार्थ त्रिशत यानी प्यासा, शांत यानी थका हुआ, अंतः सर यानी मन रूपी तालाब मज्जित करके यानी स्नान करके। व्याख्या उर्वशी राजा पुरुर्वा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे प्रेम प्यास से प्रियतम, तुम थके हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मन रूपी तालाब में स्नान करा के और चांदनी तथा फूलों से सजा करके तुम्हारे मन की गर्मी यानी दुख को दूर कर दूंगी। मैं पानी से भरी हुई बदली बनकर तुम्हारे चारों ओर से घेर कर तुम पर छा जाऊंगी और फूलों की छाया के नीचे अपने होठों का अमृत तुम्हें पिलाऊंगी। पुरुर्वा तुम मेरे बहुरंगे स्वप्न की मणिकुटिन प्रतिमा हो, नहीं मोहती हो केवल तन की प्रसन्न दित से ही, पर गति की भंगिमा लहर से स्वर से किलकिंचित से और गूढ़ दर्शन चिंतन से भरी उक्तियों से भी। शब्दार्थ मणिकुटत मणि से काटी अथवा पीसी गई, द्युति यानी शोभा, भंगिमा लहर यानी हावों भावों की लहर, किलकिंचित संयोग श्रृंगार का भाव जिसमें नायिका एक बार में कई भाव प्रकट करती है। व्याख्या राजा पुरुर्वा उर्वशी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उर्वशी, तुम मेरे बहुरंगे स्वप्नों की मणि से पीसी गई मूर्ति हो। तुम केवल अपने तन की अत्यधिक शोभा से ही मेरे मन को नहीं हरती, बल्कि गति में हाव भावों की लहर से, अपने मधुर स्वर से, अनेक प्रकार के भावों से, गूढ़ दर्शन चिंतन से भरी हुई उक्तियों से ही मुझे अपनी ओर खींचती हो। कहने का भाव यह है कि तुम केवल शरीर से सुंदर नहीं हो, वरन काम शास्त्र और दर्शन शास्त्र में ही पारंगत हो। किंतु अनल की दाहकता यह दर्शन हर सकता है, हर सकते हैं उसे मात्र ये दोनों नयन तुम्हारे, जिनके शुचि निस्सीम नील नभ में प्रवेश करते ही मन के सारे द्विधा द्वंद चिंता भय मिट जाते हैं, या प्रवाल से अधर दीप्त जिनका चुम्बन लेते ही धुल जाती है शांति प्राण के पाटल खिल पड़ते हैं और उम्र आसुरी शक्ति फिर तन में छा जाती है। शब्दार्थ, प्रवाल यानी नव पल्लव, पाटल यानी कमल, आसुरी शक्ति यानी काम वासना। व्याख्या, किंतु मेरे मन में प्रेम की आग धक रही है, उसकी धधक को तुम्हारे शरीर का सौंदर्य शांत नहीं कर सकता, उसे तो केवल तुम्हारे दोनों नेत्र ही शांत कर सकते हैं, जिनके शुद्ध असीम नीले आकाश में प्रेम प्रवेश करते हैं, अर्थात जिनमें झांकते हैं मन के सारे द्विधा द्वंद चिंता और भय आदि दुखद भाव मिट जाते हैं, या नव पल्लव के समान चमकते हुए तुम्हारे अधर दूर कर सकते हैं, जिनका चुंबन लेते ही सारी थकान मिट जाती है और प्राण के कमल खिल उठते हैं तथा मन में फिर से अपार काम वासना उमड़ पाती है। किंतु हायरी लहर वहन की जिसे रक्त कहते हैं, किंतु हायरी अविच्छिन्न वेदना पुरुष के मन की, कर्पूरित उन्मद सुरम में इसके रंगीन धुएं में जाने कितनी पुष्पमुखी आकृतियां उतर आती हैं, रंगों की यह घटा व्यग्र झंझा यह मादकता की चाहे जितनी उड़े बुद्धि पर राह नहीं पाती है, छिपता भी यदि पुरुष कभी क्षण भर को निवृत्त निलय में, यही वहन फिर उसे खींच मधुवन में ले आती है। वहन यानी आग, अविच्छिन्न यानी अटूट, कर्पूरित यानी कर्पूर से भरा हुआ, निवृत्त यानी अकेला, निलय यानी स्थान। व्याख्या, किंतु मनुष्य के शरीर में दौड़ती हुई आग की लहर जिसे खून कहते हैं और मनुष्य के मन की अटूट वेदना, इन दोनों को ही धिक्कार है, क्योंकि इनके कपूर से भरे हुए पागल बना देने वाले सुंदर और रंगीन कुएं में न जाने मनुष्य को कितनी पुष्पमुखी रमणियों की याद आती है। इस स्मृति के कारण मादकता की व्याकुल बना देने वाली झंझा के कारण मनुष्य किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वह चाहे कितना सोचे उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। यदि कभी मनुष्य कुछ देर के लिए किसी एकांत स्थान में जाकर छिप जाता है तो शरीर की आग उसे फिर से खींचकर मधुवन में प्रेम के लोक में ले जाती है। अप्रतिहत यह अनल दग्ध हो इसकी दाहकता से, कुंज कुंज में जगे हुए कोकिल क्रंदन करते हैं, घूर्ण चक्र आंसू पुकार झंझा प्रवेग उद्वेलन करते रहते सभी रात भर दीर्ण विदीर्ण तिमिर को, और प्रात जब महाशुद्ध प्लावन पद फैलाता है, जगती के प्रहरी सेवित संबंध टूट जाते हैं, दुर्निवार यह वहनि मुग्ध इसकी लौ के इंगित से, उठते हैं तूफान और संसार मरा करता है। शब्दार्थ, प्रतिहत यानी निर्बाध लगातार, अप्रतिहत मतलब दाहकता यानी उष्णता, घूर्ण चक्र यानी बवंडर, झंझा यानी तूफान, दीर्ण विदीर्ण यानी चीरते रहते हैं, तिमिर यानी अंधकार, क्षुब्ध यानी व्याकुल, प्लावन पद यानी क्रांति का अथवा विनाश का चरण, जगति यानी संसार, प्रहरी सेवित यानी ईश्वर रूपी रक्षक द्वारा रक्षित, दुर्निवार यानी रोकने में असमर्थ, वहनि यानी आग। प्रसंग, कवि की विचारधारा के अनुसार मानव शीतल पीयूष धारा से परे संघर्ष की एक साकार प्रतिमा है, विरह मिलन तथा सुख दुख के द्वंद में जूझते रहना उसे पसंद है, उसे विशाल वक्षस्थल में संघर्ष विद्रोह एवं क्रांति की आग निर्बाध रूप से जलती रहती है, अतः यह अनल शब्द मनुष्य के संघर्षशील व्यक्तित्व के लिए आया है। व्याख्या, कवि कहता है कि यह अनल निर्बाध रूप से जल रही है, इसकी घोर उष्णता से तापित होकर प्रकृति प्रांगण के प्रत्येक लता कुंजों में जगे हुए कोकिल क्रंदन कर रहे हैं। अनयोक्ति अलंकार द्वारा कवि ने कोकिल को पुष्प का रूप दिया है और यह बताया है कि जब प्रेम की आग में तपकर वह जाग जाता है अर्थात ऊर्ध्वमुखी होने लगता है तो उसके हृदय में संघर्ष सा पैदा हो जाता है और वह अपने इच्छित वस्तु को पाने के लिए क्रंदन कर उठता है। उसके हृदय में उठे हुए नाना प्रकार के वात्याचक, आंसू, विवशता, पुकार, विनय तथा याचना, तूफान, विद्रोह, आवेग तथा उद्वेलन अपनी वियोग रूपी रात्रि के गहन अंधकार को दीर्ण विदीर्ण करते रहते हैं और प्रातःकाल अग्नि से युक्त सूर्य रूप पुरुष अत्यधिक व्याकुल होकर अपने क्रांति के चरणों का विकास करता है और ईश्वर रक्षित अथवा धर्म न्यायिकों द्वारा रक्षित संसार के सभी बंधन चूर्ण विचूर्ण हो जाते हैं। यह अग्नि अत्यंत दुर्निवार है। इसकी लौ से मुग्ध तथा संकेतित होकर संसार में बड़े बड़े तूफान उठते हैं और महाप्रलय का उदय होता है। विशेष पुरुष तथा देवता में भेद्य भेदक संबंध दर्शाने वाली यह एकमात्र अग्नि है। अग्नि तृषा द्वंद्व संघर्ष तथा असंतोष की सूचिका है, जो पुरुष की मुख्य विशेषता है। और देवता शीतल होते हैं, उनमें अग्नि नहीं होती। जब मनुष्य भी इस अग्नि से ऊपर उठकर आभ्यंतर लोक में पहुंच जाता है, तब वह भी देवतुल्य हो जाता है।